ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। समुन्नत राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं के इल्म को दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने को प्राथमिकता देने की जरूरत है, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा का कथन। सरकार ने मीटर ब्याज की समस्या का समाधान के लिए गठित किया कार्यदल। नेपाल में आज कोरोना के 781 नए मामले आए सामने, दो संक्रमितों की हुई मौत। दूसरे चरण अंतर्गत बाकी रहे 50 जिलों के बच्चों के लिए भाद्र 5 गते से होगा टीकाकरण अभियान संचालित। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चरमपंथी संगठन जैश ए मोहम्मद के अब्दुल रऊफ अजहर सहित कई चरमपंथियों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रस्ताव पर चीन द्वारा लगाई गई रोक को भारत ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा ने कहा कि समुन्नत राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं के इल्म को दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर आज राष्ट्रीय युवा परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देववा ने कहा कि अंतर पीढ़ी इल्म हस्तांतरण में चुनौती जरूर दिख रही है, लेकिन उन चुनौतियों को अवसर के रूप में लेना चाहिए। इस बात का जिक्र करते हुए कि सरकार ने युवा उद्यमशीलता को प्राथमिकता दे रखी है, प्रधानमंत्री ने युवाओं को जीवनोपयोगी इल्म सिखाकर स्वदेश में ही जीविकोपार्जन की व्यवस्था होने की बात पर जोर दिया। श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले ऋषि तर्पण, रक्षाबंधन और जनेऊ पूर्णिमा आज स्थानीय परंपराओं के अनुसार मनाए गए। विशेषकर तराई क्षेत्र और कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में भी बहनों और पुरोहितों से राखी बंधवाकर रक्षाबंधन मनाया गया। वहीं राजधानी समेत विशेषकर पहाड़ी और हिमालयी क्षेत्रों में यज्ञोपवीत परिवर्तन और पंडितों पुरोहितों से रक्षा सूत्र बंधवाकर जनेऊ पूर्णिमा मनाई गई। आज के दिन भाइयों के अपनी बहनों से राखी बंधवाकर आशीर्वाद और शुभकामनाएं लेने और उन्हें नकद के अलावा विभिन्न उपहार भेंट कर बहनों की रक्षा का वचन देते हुए रक्षाबंधन मनाने की परंपरा है। इसी तरह ऋषियों का तर्पण कर ऋषि तर्पण और मानव रक्षा के लिए जप तप पूजा किए जाने के साथ ही मंत्रोच्चारण पूर्वक पुरोहितों से रक्षा सूत्र बंधवाते हुए जनेऊ बदलने के साथ जनेऊ पूर्णिमा मनाई गई। पहाड़ी और हिमालयी क्षेत्र में आज के दिन टोटी निकले हुए 11 प्रकार के दानों को पकाकर खाने का रिवाज है, जिसे यहां क्वांटी कहा जाता है। टोटीदार दानों को खाने में शामिल करने से स्वास्थ्य बेहतर होने की मान्यता के साथ इसे त्योहार का अंग माना गया है। सरकार ने मीटर ब्याज की गतिविधि पर नियंत्रण के लिए कार्यदल गठित किया है। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा के निर्देश पर गृहमंत्री बालकृष्ण खाण ने मंत्रिस्तरीय निर्णय के आधार पर मंत्रालय के सहसचिव डॉ भीष्म भूषाल के संयोजकत्व में 6 सदस्यों का कार्यदल गठित किया। कार्यदल के सदस्यों के रूप में सीआईबी के एसएसपी दिनेश आचार्य, गृह मंत्रालय के कानून उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, काठमांडू घाटी के अपराध अनुसंधान कार्यालय के एसपी कृष्ण प्रसाद कोरियाला लगायत शामिल हैं। वहीं कार्यदल के सदस्य सचिव की जिम्मेदारी सीआईबी के डीएसपी रोशन थापा को सौंपा गया है। प्रधानमंत्री देववा ने आज सुबह गृहमंत्री खाण, नेपाल प्रहरी के आईजीपी धीरज प्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरी के आईजीपी राजू अर्याल और गृह मंत्रालय के सहसचिव को बुलाकर मीटर ब्याज संबंधी समस्या समाधान के लिए इस गतिविधि में शामिल लोगों को कार्यवाही के दायरे में लाने और भविष्य में इस तरह के अपराध न होने देने के उद्देश्य के साथ पहलकदमी करने का निर्देश किया। कार्यदल को एक महीने के अंदर रिपोर्ट पेश करने का कार्यादेश दिया गया है। देश में आज कोरोना के 781 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 511 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। वहीं आज 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में 23,801 व्यक्तियों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। आगामी भाद्र 5 गते से दूसरे चरण अंतर्गत बाकी रहे 50 जिलों के बच्चों को लक्षित कर सरकार कोरोना के विरुद्ध टीकाकरण अभियान संचालन करेगी। 50 जिलों के 5 से 11 साल तक के बच्चों को लक्षित कर टीकाकरण अभियान शुरू किए जाने की जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी। बता दें कि भाद्र 5 गते से 11 गते तक वैक्सीन का पहला और भाद्र 27 गते से आश्विन 1 गते तक दूसरा डोज दिया जाएगा। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ने कहा कि देश के विकास के लिए सभी भाषा भाषियों, जातियों और समुदायों का विकास होना जरूरी है। नेपाल कुशवाहा कल्याण समाज के 21वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में सरकार के प्रवक्ता मंत्री कार्के ने कहा कि जब तक पिछड़े वर्ग का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास नहीं होगा तब तक नेपाल को समृद्ध बनाना असंभव है। उन्होंने कहा कि नेपाल को समृद्ध बनाने में सभी नागरिकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलिकम को 4G वीडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबै को यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नजी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा से नेपाल के लिए चीनी राजदूत हो यांचे ने मुलाकात की। सभामुख निवास लैंचर में हुई मुलाकात में उनके बीच दो देशों के संबंध, आपसी हित लगायत विषयों में चर्चा हुई। सभामुख सापकोटा ने कहा कि नेपाल एक चीन नीति के प्रति हमेशा से प्रतिबद्ध है। सभामुख सापकोटा ने नेपाल के आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में चीन सरकार द्वारा किए गए निरंतर सहयोग के लिए चीन सरकार को धन्यवाद भी दिया। साथ ही कोविड-19 और प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न स्थिति का नियंत्रण के लिए चीन सरकार से प्राप्त सहयोगों की सराहना की। मौके पर राजदूत यांचे ने कहा कि नेपाल की स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता और राष्ट्रीय अखंडता के पक्ष में चीन हमेशा से समर्थन करता आया है। नेपाल सरकार और थारू कल्याणकारिणी सभा के पदाधिकारियों के बीच आज विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श के दौरान सरकार के सामने सभा के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों पर सरकार का ध्यानाकर्षण कराया। मांगों के विषय में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी तरफ से गृह कार्य कर पुनः बैठक बुलाने की बात पर सहमति जताई। ये जानकारी गृह मंत्रालय के प्रवक्ता फणेन्द्र मणि पोखरेल ने दी। मध्य प्रदेश सभा के चालू 9वें अधिवेशन का बीती रात अंत हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार की सिफारिश पर प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र ने प्रदेश सभा का 9वां अधिवेशन समाप्त होने की घोषणा की। ये जानकारी प्रदेश सभा सचिवालय के सचिव रंजित कुमार यादव ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चरमपंथी संगठन जैश ए मोहम्मद के उप प्रमुख अब्दुल रऊफ अजहर सहित कई चरमपंथियों पर प्रतिबंध लगाकर वैश्विक चरमपंथी करार देने वाले प्रस्ताव पर चीन द्वारा लगाई गई तकनीकी रोक को भारत ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। इस प्रस्ताव को भारत और अमेरिका ने पेश किया था जिस पर विचार करने की बात कहकर चीन ने रोक लगा दी। 2 महीनों से भी कम समय में यह दूसरी बार है जब चीन ने इस प्रस्ताव पर रोक लगाई है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आज इस पर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा जैश ए मोहम्मद का उप प्रमुख अब्दुल रऊफ अजहर आतंकवाद की कई घटनाओं में लगातार शामिल रहा, चाहे सन 1999 में इंडियन एयरलाइंस का अपहरण हो या सन 2001 में संसद पर हुआ हमला या 2014 में कठुआ आर्मी कैंप और 2016 में पठानकोट के वायुसेना बेस पर हुए हमले। वहीं ताइवान के मौजूदा हालात पर बागची ने कहा कई अन्य देशों की तरह भारत भी हाल के घटनाक्रमों से चिंतित है। भारत संयम बरतने, स्टेटस बदलने के लिए होने वाली एकतरफा कार्रवाई से बचने, तनाव कम करने और इलाके में शांति और स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करने का आग्रह करता है। सन 1972 के ओलंपिक खेलों में मारे गए इसराइलियों के परिवारों ने जर्मनी सरकार द्वारा मुआवजे के नए प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। वो म्यूनिख त्रासदी की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित किए जा रहे विशेष कार्यक्रम में भी हिस्सा नहीं लेंगे। इसके अलावा म्यूनिख त्रासदी में मारे गए इसराइलियों के परिवारों ने जर्मन राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर से सार्वजनिक माफी का भी अनुरोध किया है। 5 सितंबर 1972 को म्यूनिख ओलंपिक के दौरान 8 हथियारबंद अरब चरमपंथियों ने ओलंपिक गांव में घुसकर 2 इसराइली खिलाड़ियों को गोली मार दी, वहीं 9 को बंधक बना लिया। चरमपंथियों ने चेतावनी दी थी कि 232 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए, नहीं तो बंधक बनाए गए खिलाड़ियों को भी मार दिया जाएगा। इस पर जर्मनी पुलिस ने बचाव अभियान को ठीक से लागू नहीं किया, नतीजतन सभी 9 इसराइली मार दिए गए। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। समुन्नत राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं के इल्म को दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने को प्राथमिकता देने की जरूरत है, प्रधानमंत्री शेख बहादुर देउबा का कथन। सरकार ने मीटर ब्याज की समस्या समाधान के लिए गठित किया कार्यदल। नेपाल में आज कोरोना के 781 नए मामले आए सामने, 2 संक्रमितों की हुई मौत। दूसरे चरण अंतर्गत बाकी रहे 50 जिलों के बच्चों के लिए भाद्र 5 गते से होगा टीकाकरण अभियान संचालित। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चरमपंथी संगठन जैश ए मोहम्मद के अब्दुल रऊफ अजहर सहित कई चरमपंथियों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रस्ताव पर चीन द्वारा लगाई गई रोक को भारत ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। शुभरात्रि।